आहान ने चाहत की मॉम का इलाज और पैसों का बोलकर सीधे सीधे चाहत का मुंह बंद कर दिया था। अब चाहत के पास पीछे हटने का रास्ता भी नहीं था। आहान का घर आने तक चाहत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। आहान भी बात करने के मूड में नहीं था, तो उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में आहान का घर आ चुका था। गाड़ी पार्क करने के बाद आहान चाहत के साथ अंदर जाने लगा। तभी उसके कानों में गार्ड्स की कानाफूसी करने की आवाज पड़ी, तो आहान के कदम वहीं रुक गए। ये लड़की वही है ना जो कल रात को यहाँ थी? दिखने में काफी खूबसूरत है, जरा रेट तो पता करना, क्या पता हमें भी मौका मिल जाए, एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा। चाहत को भी उसकी बात सुनाई दे गई थी। गुस्से में उसके हाथ की मुठ्ठियाँ कस गई थी। आहान ने चाहत के चेहरे को देखा, उसकी आंखें नम होने लगी थी। आहान तेज कदमों से सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे दीवार के लगा दिया। गार्ड आहान की इस हरकत पर बुरी तरह डर गया। आहान ने उसके गाल पर एक जोरदार पंच मारा और फिर पागलों की तरह उसका सिर दीवार के भिड़ाने लगा। थोड़ी ही देर में गार्ड का सिर खून से लथपथ था और वो आहान को छोड़ने के रो रहा था। इससे पहले कि आहान उसकी जान लेता, चाहत दौड़कर उसके पास गई। चाहत ने आहान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्लीज आहान, आप इसकी जान लेंगे क्या? छोड़ दीजिए इसे। हाँ ले लूंगा जान, जो तुम्हें लेकर ऐसी गंदी नीयत रखेगा मैं हर उस शख्स की जान ले लूंगा, आहान गुस्से में चाहत पर चिल्लाया। उसे आहान ने एक बार फिर कल रात वाला आहान नजर आया। चाहत के चेहरे पर भी डर के भाव थे, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि उसने कुछ नहीं किया तो आहान उस गार्ड की जान ले लेगा। चाहत ने गार्ड की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, जाओ यहाँ से। आहान का चेहरा चाहत की तरफ था, तो मौका देखकर वो गार्ड जल्दी से चला गया। कोई भी गार्ड आहान को रोकने के लिए नहीं आया, ये देखकर चाहत को बहुत हैरानी हुई। चाहत आहान का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच कर ले गई। अंदर आने के बाद चाहत ने इधर उधर देखा। कल रात उसका घर बिखरा हुआ पड़ा था, आज वो करीने से सजा था। जो शो पीस टूटे हुए थे उनकी जगह नए एंटीक पीस रख दिए गए थे। चाहत ने आहान को काउच पर बैठाया और दौड़कर उसके लिए पानी लेकर आई। चाहत ने आहान को पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगी। आहान को इससे काफी अच्छा भी महसूस हो रहा था। अचानक वो चाहत के गले लगकर बोला, डॉल तुम्हें एहसास भी नहीं है तुम मेरे क्या बन गई हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में वो सब कहने की। रिलैक्स आहान, मैं ठीक हूँ, चाहत ने आहान को सहलाकर कहा। कुछ पल उनके बीच एक चुप्पी छाई रही, जहाँ आहान आंखें बंद करके सुकून से चाहत के गले लगे हुए था। तभी चाहत ने अचानक पूछा, आहान मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। तो मत समझो ना डॉल, आई एम कॉम्प्लिकेटेड, मैं भी आज तक खुद को नहीं समझ पाया हूँ, आहान ने जवाब दिया। आहान की पकड़ चाहत पर कसती जा रही थी और इससे उसे तकलीफ हो रही थी। चाहत उसे कुछ नहीं कह पा रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद आहान बोला, आई वॉन्ट टू फील यू डॉल, कल रात जो भी हुआ उस वक्त मैं ठीक से होश में भी नहीं था। मैं हमारे रिश्ते की एक नई और अच्छी शुरुआत चाहता हूँ। मेरा मूड भी अब ठीक है और तुम्हारी मम्मा का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, तो तुम भी स्ट्रेस फ्री हो। चलो सब करते हैं, लेकिन इस बार प्यार से। वैसे भी अब ये मोमेंट्स हमारे बीच बनते रहेंगे। बोलते हुए आहान चाहत से अलग हो गया। चाहत अच्छे से समझ पा रही थी कि आहान की बातों का मतलब क्या था। उसे आहान के साथ इंटीमेट हुए ठीक से 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि वो फिर से क्लोज आना चाहता था। कल रात का दर्द भी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, तो इतनी जल्दी वो इसके लिए ना तो इमोशनली और ना ही फिजिकली तैयार थी। चाहत चुप थी। आहान ने चाहत का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, पहले हम साथ में डिनर करते हैं और फिर फ्रेश होने के बाद कंटिन्यू करते हैं। चाहत ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। आहान बार बार उसके सामने उसकी माँ का नाम ले रहा था, इस वजह से चाहत मजबूर हो गई थी। मुझे वॉशरूम जाना है, चाहत ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे कुछ पल अकेले रहना था, इसलिए उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। ठीक है, ऐसा करो कि तुम बात भी ले लेना, तुम पूरे दिन बाहर थी इसलिए थक गई होगी, आहान ने मुस्कुराकर कहा और फिर चाहत को बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। चाहत को आहान के सामने कुछ भी कहने से डर महसूस हो रहा था। उसने अपने डर को काबू करके कहा, लेकिन आहान यहाँ मेरे कपड़े नहीं हैं, नहाने के बाद मैं पहनूंगी क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है डॉल, अंदर बाथरूम पड़ा है, उसे पहनकर आ जाना। वैसे भी कुछ ही देर में जो पहना है वो निकालना ही है, आहान ने आई विंक करके कहा और फिर चाहत को बाथरूम में छोड़कर डिनर ऑर्डर करने के लिए चला गया। चाहत बाथरूम में थी और शावर के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने सुबकते हुए कहा, ये मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं आहान को मना क्यों नहीं कर पा रही कि मुझे उनके साथ कुछ भी नहीं करना। मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो मेरे क्लोज आते हैं, ना ही मैं उनसे प्यार करती हूँ। उन्होंने मेरी माँ का इलाज कराया, इसके लिए मैं हमेशा उनकी थैंकफुल रहूंगी, पर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। चाहत को बाथरूम गए हुए काफी टाइम हो गया था, इस बीच खाना भी आ गया था। आहान वॉशरूम के बाहर आया और दरवाजा खटखटाकर कहा, डॉल क्या कर रही हो तुम, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। आ रही हूँ, बस 5 मिनट तो दीजिए, चाहत ने अपना रोना कंट्रोल करके कहा। उसने जल्दी से टॉवल से खुद को पोंछा और फिर बाथरूम पहन लिया। चाहत आईने के सामने खड़ी अपने बालों को सही कर रही थी, तभी उसकी नजर खुद पर पड़ी। वो काफी थकी हुई लग रही थी और उदास भी। उसकी बॉडी पर कल रात के निशान अब क्लियरली दिख रहे थे। पहली बार चाहत को खुद को आईने में देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वो चाहत है ही नहीं जो उसकी शख्सियत थी। नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला, मैं उनके पैसे चुका दूंगी। वो मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही मुझे अपने साथ सोने के लिए फोर्स कर सकते हैं, चाहत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उसने मन में आहान से बात करने का डिसीजन लिया और फिर बाहर आई। चाहत को बाहर देखकर आहान एकटक उसे देख रहा था। उसने व्हाइट कलर का शॉर्ट वार्डरोब पहना हुआ था और उसके गीले बाल बिखरे हुए थे, कुछ उसके चेहरे पर भी आ रहे थे। आहान चाहत के चेहरे में खोया हुआ था। तभी चाहत ने कहा, मुझे भूख लगी है आहान। आहान ने मुस्कुराते हुए उसके बात पर हामी भरी। चाहत ने पहली बार आहान को मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी स्माइल काफी प्यारी थी जिससे उसके गालों पर हल्के डिंपल भी पड़ते थे। वो आहान की तरफ अट्रैक्ट जरूर थी, लेकिन वो उसके साथ जो भी कर रहा था उसके बाद चाहत चाहकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहां से वो दोनों डाइनिंग टेबल पर चले गए और साथ बैठकर खाना खा रहे थे। दामिनी अभी भी आहान के फार्म हाउस पर कैद थी और दानिश उसका ध्यान रख रहा था। आहान के ऑर्डर के हिसाब से अब उसे बांधकर नहीं रखा जाता था और वो थोड़ा बहुत घूम कर सकती थी, फिर भी उसे बेसमेंट के एक हिस्से नहीं जाने की इजाजत थी। रात के लगभग एक बज रहे थे। दानिश और उसके आदमी सो चुके थे। दामिनी को नींद नहीं आ रही थी। वो ये भी जानती थी कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती है, तो उसने वॉक करने के लिए बेसमेंट की दूसरी तरफ जाने का सोचा। मुझे अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर नहीं बितानी है, इनके सोने के बाद मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, दामिनी ने अपने मन में कहा और धीमे कदमों से बेसमेंट की दूसरी तरफ गई। बेसमेंट काफी बड़ा था, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर एक लंबा सा पैसेज बनाया हुआ था जो ज्यादा चौड़ा नहीं था। उसे पार करने के बाद दामिनी को एक दरवाजा दिखाई दिया।
उस कमरे की तरफ देखकर दामिनी ने धीरे से कहा, इस रूम में कुछ तो ऐसा है जो आहान सबसे छुपाना चाहता है। मैंने उस आदमी को इस तरफ खाने की प्लेट के साथ जाते हुए देखा था। दामिनी एकटक कमरे की तरफ देख रही थी। कमरा बाहर से लॉक नहीं था क्योंकि उस बेसमेंट में दानिश और उसके आदमी ही थे और वहां से भाग पाना आसान नहीं था। दामिनी ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। कुर्सी पर एक लड़की बंधी हुई थी जो दुल्हन के जोड़े में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। दामिनी उसके पास जाने लगी, लेकिन उसकी बॉडी से आ रही बदबू को वो सहन नहीं कर पाई तो उसने जल्दी से अपने नाक पर हाथ रख लिया। ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है, दामिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर सोचा। वो लड़की सोई हुई थी इसलिए उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। दामिनी ने धीरे से उसका चेहरा सही किया और उसे देखकर पहचान की कोशिश करने लगी। काफी टाइम से वो लड़की वहां थी और जब से आई थी नहाई भी नहीं थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरे पर काले निशान थे। तभी दामिनी की नज़र उसके गले में पड़ी एक नेकलेस की तरफ गई। उसे देखते ही दामिनी के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और वो आंखें बड़ी करके बोली, अक्षरा गोयनका।